Godlywood Studios presents ब्रह्मकुमारीज पॉडकास्ट। जिंदगी बने आसान।
नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमें किसी भी चीज को या किसी भी व्यक्ति को कभी भी बेकार नहीं समझना चाहिए, क्योंकि एक बंद घड़ी भी पूरे दिन में दो बार सही समय दिखाती है। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर गिरीश पटेल जी। ओम शांति।
ओम शांति।
वेलकम टू आवर शो भाई जी। डॉक्टर साहब, अब मैं जानना चाहती हूँ कि किस तरह से हम और कौन से ऐसे कॉजेज हैं जिसके बारे में हमने अभी तक चर्चा नहीं की।
जो महत्वपूर्ण बात है
जी,
वह यह है कि व्यक्ति सोचता कैसे है।
ओके।
क्योंकि एंग्जाइटी तो विचारों से ही आती है ना।
बिल्कुल।
कि आज एंग्जाइटी इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि हमें सोचना ही नहीं आता है।
करेक्ट।
ये बड़ा अजीब सा लगेगा, बहुत कुछ सिखाया जाता है कि भी बच्चे को हम चलना सिखाते हैं, लिखना सिखाते हैं, परंतु सोचना नहीं सिखाते।
बिल्कुल।
कि आज हम जानते नहीं कि भी सचमुच कैसे सोचना चाहिए विभिन्न परिस्थितियों में। तो यह मैं समझता हूँ बहुत बड़ा कारण है कि इतनी एंग्जाइटी क्यों बढ़ रही है।
Correct.
क्योंकि भी थोड़ा भी कुछ हुआ इमीडिएटली व्यक्ति डरता है ना, एंग्शियस हो जाता है
जी।
और एक छोटी सी बात है कि जिन्होंने बार बार कुछ परिस्थिति का सामना किया है तो उनको एंग्जाइटी कम होगी।
बिल्कुल।
जैसे कि भी पहले गाँव में ना डकैती बार बार होती थी, तो शायद उनको उस कि इतनी एंग्जाइटी नहीं होगी।
बिल्कुल।
लेकिन जब कभी कभी होना है तो एंग्जाइटी हो सकती है। जैसे उदाहरण के रूप में कि भी जिस कंट्रीज में ने टेररिस्ट अटैक्स होते ही रहते हैं ना, वो उनके लिए डे इन एंड डे आउट हो रहा है, तो उनको इतनी ज्यादा एंग्जाइटी नहीं है। लेकिन जहां कभी कभी होना है कि भी दो साल में, तीन साल में एक आध बार ऐसा कुछ होगा, तो वो डर, वो एंग्जाइटी हमारी बढ़ जाती है।
बिल्कुल।
ना, और अगर गहराई से हमें कारण को सोचना हो तो ये भी कारण है कि अब हमारे एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए। पहले लोगों के एक्सपेक्टेशंस कम थे कि हमें घर है, खाने को मिल जाएगा तो बस है। तब भी शायद ये एंग्जाइटी थी कि दुकाल हो जाएगा तो फिर कैसे हम सर्वाइव करेंगे। परंतु आज क्योंकि हमारी अपेक्षाएं बहुत बढ़ गई ना, उसके कारण भी एंग्जाइटी होती है। कई बार तो आपको आश्चर्य होगा कि सब कुछ, एक व्यक्ति हमारे पास था कि बे वो हर साल कहीं ना कहीं पिकनिक पे जाएंगे भारत के बाहर। वो प्लान करते थे कि साल में एक बार 15-20 दिन तो बाहर के बाहर जाना है। फिर थोड़ी सी समस्या हुई, बिजनेस कम हो गया, तो उसकी भी एंग्जाइटी होगी कि अभी इस साल हम नहीं जा पाएंगे। तो
जी,
खाने पीने की कोई समस्या नहीं है, परंतु ये एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल नहीं होगा तो क्या, उसकी भी एंग्जाइटी होगी।
बिल्कुल।
तो ऐसे देखो तो जो हमारी विचारधारा, हमारी एक्सपेक्टेशन, जिसको ये भी कहते हैं कि भी लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल हो गया है। पहले हमारी मन की स्थिति को आंतरिक बातें हैं वह कंट्रोल करती थी।
बिल्कुल।
आज देखो तो बाह्य बातें हैं वह कंट्रोल कर रही है
जी।
और एक हम ये भी कह सकते, थोड़ा सूक्ष्म है और थोड़ा गहराई में जा सकते हैं कि आज जो वाइब्रेशंस मिल रहे
जी,
वह भी गलत प्रकार के मिल रहे,
क्योंकि थॉट कंट्रोल सभी का नेगेटिव हो गया है तो इस चक्कर में शायद।
तो उसके कारण आप जहां पर भी जाते हो देखेंगे कि वातावरण ही नेगेटिव बनना है।
बिल्कुल।
तो जो वाइब्रेशंस नेगेटिव आ रहे हैं उसके कारण भी एंजाइटी बढ़ रही है। और एक कारण यह भी हो सकता है कि पास्ट बर्थ में कोई एंजाइटी से कोई व्यक्ति की मृत्यु हुई।
करेक्ट।
कोई कहीं फंस गया और उससे उसकी मृत्यु हुई। फॉर एग्जाम्पल कि कोई पानी में डूब करके मरा है
जी,
तो हो सकता है कि इस जन्म में पानी का उसको बहुत डर लगे, जो मैंने फोबिया बोला ना।
बिल्कुल बिल्कुल।
वो एक प्रकार से एंग्जाइटी का ही आगे का स्टेट है, तो उसे पानी का बहुत डर लग सकता है
जी।
ऐसे फॉर एग्जाम्पल की भी जो रेप विक्टिम्स है, भी किसका रेप कर दिया, उसको मार दिया गया, तो भी उसे वो प्रकार की एंग्जाइटी बहुत ज्यादा हो सकती है।
ओके।
ना कि भी कोई भी जो अपोजिट सेक्स के व्यक्ति के वो क्लोज जाएगी नहीं, क्योंकि उसके अंदर वो एक जनरल एंग्जाइटी होगी सदा के लिए।
बिल्कुल।
तो ये पास्ट बर्थ के एक्सपीरियंस भी शायद एंग्जाइटी कर सकते
हैं। अच्छा, दिस इज आल्सो वन ऑफ द कॉजेस।
और थोड़ा हम जैसे आप पूछ रहे हैं,
हाँ जी,
अगर और हम गहराई में जाए, अगर हम पास्ट बर्थ को मानते हैं
जी,
और ऐसे केसेस मैंने भी देखे कि एक पॉसिबल जरूर है, और फिर उस प्रकार से उसकी ट्रीटमेंट भी चेंज हो जाएगी।
बिल्कुल।
परंतु अगर कॉजेस के बारे में हम सोचे तो ये भी एक कॉज, और एक कॉज ये भी हो सकता है कि हमारे कर्म का हिसाब है।
बिल्कुल।
कि हमने कर्म ऐसे किए हैं, तब व्यक्ति बोलता है कुछ भी नहीं। आज कई बार मैंने देखा है कि एक व्यक्ति गलत कर्म कर रहा है, वो दिखाई दे रहा है, तो उसको दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कहे कि भाई एक बहन है, सास के साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रही है, वो दिखाई दे रहा है।
करेक्ट।
है ना, उसको भी पता है कि मैं बुरा कर रही हूँ, आसपास में भी लोग बोलते कि तुम बुरा कर, लेकिन उसको बोलेंगे देखो तुमने किया, आगे चल के तुमको भी ऐसा होगा, तुम भी एक दिन बूढ़ी होने वाली हो, तुम्हारी भी बहू आने हो, तो कि मेरे साथ नहीं होने वाला है। है ना, हो कहेगी मैं पूरा ध्यान रखूंगी, है ना, बेटे की शादी के समय 10 बार पूछूंगी, है ना, उसको चेक करके करूंगी, ऐसा कोई, लेकिन वो सचमुच होता है। मैंने बहुत सारे केसेस देखे, बल अलग प्रकार से होगा।
बिल्कुल।
कोई एक एरिया में शायद प्रिकॉशंस ले ले वे, लेकिन दूसरे सब एरिया में तो प्रिकॉशंस नहीं ले पाएगा ना।
बिल्कुल।
तो ये भी कहेंगे कि भी एंग्जाइटी एक कर्म का हिसाब भी है, हर बीमारी में है, सिर्फ एंग्जाइटी में ही नहीं है।
करेक्ट।
तो इसलिए हमें अपने कर्मों पर भी ध्यान रखना चाहिए।
जी, कर्मों की बात अगर हम करें तो इससे थोड़ा और आगे बढ़े अगर हम, कि कर्म ऐसे कहते हैं कि अगर अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि सामने जो मुझे दिख रहा है वो इनपुट तो गलत ही आ रहा है, नेगेटिव ही आ रहा है, तो अपने आप को किस तरह से हम,
कौन सा इनपुट,
इनपुट एज इन जो हमें रिजल्ट मिल रहा है जिंदगी में, हमारे आसपास जो चीजें घट रही हैं वो सब कुछ नेगेटिव घट रही है, तो अच्छा करके भी अगर मुझे नेगेटिव ही मिलना है तो मैं अच्छा क्यों करूं।
लेकिन अब इसमें सोचना ये है कि भी बहुत सारी बातें हैं,
हाँ जी,
ना गहराई में भी इसको सोच सकते हैं कि वह हिसाब चुकतु हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपसे 5 लाख रुपए उधार लिए, हर महीने में आपको समझो 30,000 वापस लौटा रहा हूं,
जी,
तो भल मैं मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी मेरी 30,000 की अगर बचत है तो मेरी बचत तो हो ही नहीं रही है। कोई कहेगा कि भई ये तो 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरी बचत हो ही नहीं रही है। परंतु जब मैं लोन को रीपे कर रहा हूँ तब मुझे पता है
जी
कि भी मेरी लोन रीपे हो रही है, इसलिए मैं थोड़ा भी उससे डिसअपॉइंट नहीं होऊंगा।
ऑन दी कॉन्ट्री थोड़ी खुशी होगी
कि
चलो बोझ हल्का हो रहा है।
हाँ, परंतु यहाँ ऐसा नहीं होता है। जब कर्म की बात आती है तो हमें पता नहीं कि भी कौन से कर्म का हिसाब है। इसलिए हम तो बस यही सोचते हैं कि भी ऐसा नहीं हुआ,
अगर ऐसा
मैंने इतना अच्छा किया कि भी मैंने तो 10 साल तक अच्छा किया।
बिल्कुल।
है ना, लेकिन मेरे साथ तो बुरा ही हो रहा है। परंतु वो जो आपने उधार लिया है, वो जो नेगेटिव आपने उसका अकाउंट क्रिएट किया है, वो नेगेटिव अकाउंट अभी तक पूरा नहीं हुआ है।
बिल्कुल।
और नेगेटिव अकाउंट पूरा नहीं हुआ है इसलिए दिक्कत है, जैसे वो अकाउंट पूरा होगा तो पॉजिटिव स्टार्ट हो जाएगा।
ओके।
तो इसलिए ऐसा नहीं सोचना है कि भी मैंने तो कितना अच्छा किया फिर भी मेरे साथ बुरा हो रहा है।
और फिर हम बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस भी होने लगते हैं, क्योंकि आसपास सभी अगर नेगेटिव है, सारे रिश्ते अगर नेगेटिव है, तो उसके बीच में पॉजिटिव बनकर खड़े रहना अपने आप में ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और साथ ही साथ उनसे एक्सपेक्टेशंस ना रखना कि वो नेगेटिव करेंगे तो भी मुझे पॉजिटिव ही देना है, ये करने में सबसे ज्यादा मेहनत लग रही है आज।
यही है ना कर्म का सिद्धांत, अब गहराई से समझो तो उसका वो आंसर मिल गया।
अच्छा।
कि लोग भले नहीं कर रहे पर तू मुझे करना है, मुझे जो अपने कर्म है मुझे अपने कर्मों को अच्छा बनाना है।
बिल्कुल।
तो इसके कारण भल लोग नहीं कर रहे हैं, मुझे करना है।
करेक्ट।
है ना। और एक सारी बात ये हो सकती है कि पूरा जो सिनेरियो है
जी
ना, उसमें मैंने बहुत कुछ अच्छा किया फिर भी मेरे साथ बुरा हो रहा है ना। परंतु यह हम सोचे कि जैसे कहा गया ना, देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। तो बस अभी मैं टनल से पास हो रहा हूँ, मुझे पता नहीं है कहाँ वो टनल पूरी होने वाली है।
बिल्कुल।
है ना। वो 500 मीटर की है, 1 किलोमीटर की है, 2 किलोमीटर की है, परंतु स्टेट ऑफ माइंड को मैं बना के चलू कि भी जब भी ये एंड होगी प्रकाश आने वाला है।
वो दूसरी होप है, एक तरीके का होप है जो हमें क्रिएट करके रखना है हमेशा। आप ये कहना चाह रहे
हैं? नहीं मैं, हाँ होप, और ये रियल भी है।
ओके।
जैसे भी टनल से जाएंगे
जी,
तो हमें तो जब एंटर किए तब तो पता नहीं है कि कितनी लंबी है।
बिल्कुल।
तो ऐसे ही जब हमारे सामने कोई विपरीत परिस्थिति आती है वो कितना लंबा चलेगी हमें पता नहीं है। और दूसरी एक बात मैंने ये भी देखी है कि भी बहुत बड़ा कारण है कि कहीं पेशेंट्स में अच्छा हो रहा है लेकिन उनकी अपेक्षा बहुत बड़ी है।
जैसे
कि एंग्जाइटी का ही, जब मैंने अभी मुझे केस याद आ रहा है।
अच्छा।
कि भाई वो पेशेंट को बहुत एंग्जाइटी है ना, कुछ करेंगे तो अच्छा भी हो रहा है उसको, फॉर एग्जाम्पल की इतनी एंग्जाइटी की नींद भी नहीं आती है ना, उसका जॉब भी छूट गया, अभी शायद जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं, एज भी बढ़ रही है ना। तो वो अगर पेशेंट को एक बार अच्छी नींद आ गई ना तो भी सवेरे फोन करेगा कि डॉक्टर साहब मुझे एंग्जाइटी हो रही है। क्यों? क्योंकि मेरा जॉब नहीं है।
okay.
मैं कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहा हूँ। तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि भैया ये तो सोचो कि आज नींद आई।
सही बात है।
अब तक
पॉजिटिव चीजों को हम नजरअंदाज इतनी आसानी से कर देते हैं कि हमें रियलाइज भी नहीं होता। ये आपने एकदम सही कहा कि भले मुझे 10 चीज दे दी गई, जिंदगी मुझे 10 चीजें दे रही है, लेकिन मैं वो 11वीं चीज के लिए हमेशा पकड़ कर खड़ी रहूंगी कि ये चीज मुझे नहीं मिली।
हाँ।
वो नेगेटिव कहीं ना कहीं हम पकड़ करके ही रखते हैं, उसे
छोड़ते नहीं। इसके लिए मैं एक सरल सा उदाहरण देता हूँ, सबको ऑलमोस्ट देता हूँ
जी,
कि जब पेशेंट आते हैं तब उनको बताते हैं कि देखो अगर कोई कोमा में है, एक पेशेंट कोमा में है, अगर वो आंखें भी खोल दे तो परिवार वाले जंप लगाते हैं, वंडरफुल इसने आंखें खोल ली।
सही बात है
ना। कोमा वाला पेशेंट आपको पहचानने लग गया बहुत खुश होते, ये नहीं बोलते कि दौड़ नहीं रहा है।
सही बात है जी।
परंतु एंग्जाइटी वाले लोग अगर देखे एक प्रकार से कि वो बहुत एंग्शियस है, वो थोड़े शांत हुए, आराम से बैठने भी लगे, ठीक से सोने लगे, तो भी बोलते अरे अभी तो कहां ठीक हुआ, मैं काम तो नहीं कर रहा हूं। काम करना वो दौड़ना है, वो काम करना शायद 2 महीने के बाद भी आएगा, परंतु आज तो अच्छा है कि मुझे नींद आ गई, मैं 1 घंटा आराम से बैठ सका, उससे आप खुश होंगे, संतुष्ट होंगे, तो दूसरे दिन और अच्छी नींद आएगी। अन्यथा आप ये सोच सोच के एंग्शियस होंगे तो एक दिन नींद आए दूसरे दिन नींद डेफिनेटली उड़ जाएगी।
क्या ये ग्रेटफुलनेस जो हम कहते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी में हर एक चीज़ को खुशी उस चीज़ की मनानी चाहिए, ऐसे कहा जाता है ग्रैटिट्यूड जिसकी हम बात करते हैं, अब ये आप जो कह रहे हैं क्या ये ग्रैटिट्यूड से कनेक्टेड है?
ग्रैटिट्यूड भी है और दूसरा कि भी मेरा प्रोग्रेस हो रहा है।
ओके।
पहले तो मैं 1 घंटा बैठ भी नहीं सकता था, अब 1 घंटा बैठने लगा।
करेक्ट।
पहले ठीक से सो नहीं पाता था, अभी मैं सोने लगा, फिर और चीज़ें आगे की है कि मैं जॉब करूंगा, समझो जॉब भी मिल गया ना तो भी एंग्शियस होते, अरे जॉब तो मिला लेकिन इतने का ही मिला। अब ये नहीं सोचो कि भी जॉब तो मिला ना, 15,000 का जॉब मिला कोई बात नहीं है।
करेक्ट। और इससे हमारी कितनी एंजाइटी कम हो जाएगी। हाँ। क्योंकि हम जो ये आप कह रहे एकदम सही है, क्योंकि मेरी भी एक्सपीरियंस में कई बार ऐसा हुआ है कि मुझे अगर कोई स्पेसिफिक काम दिया गया है तो कई बार ऐसा होता है कि वो चीज़ को पूरा करने के चक्कर में मैं पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाती हूँ कि किस तरह से मैं इस चीज़ को पॉजिटिवली लूँ और आगे बढ़ूँ। क्योंकि आसपास तो सब कुछ इतना नेगेटिव होता जा रहा है कि उसके बीच में पॉजिटिवली खड़े रहना ये भी एक बहुत बड़ी बात हो गई है।
तो वो सर्कमस्टेंसेस है
जी,
और हमारी स्थिति भी है।
अच्छा,
एक्चुअली कुछ चीजें तो है ना, ये भी होना चाहिए कि भी इनपरफेक्शन चलेगा।
अच्छा,
जो कारण आप पूछ रहे थे ना कि जो परफेक्शनिस्ट है उनको भी एंग्जाइटी ज्यादा होती है।
Okay.
क्योंकि उनको सब परफेक्ट चाहिए।
True, this is one of my problems. ये हमेशा से रहा है ये मेरे अंदर में कि जो भी चीज हो वो सही हो और सही तरीके से प्लेस्ड हो लाइफ में तो ही मैं खुश रहूंगी, वरना थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है तो खुशी कहीं गायब सी हो जाती है।
लेकिन वो आवश्यक नहीं है
जी।
जैसे कई लोगों को ये होता है कि जो परफेक्शनिस्ट है ना, वो ऑफिस से आएंगे तो चाय भी नहीं पियेंगे जब तक सारे घर को ठीक ठाक नहीं किया। जब तक उसने टेबल को एक एक चीज परफेक्ट नहीं होगी, भले थके हारे आए हैं लेकिन वो कंप्लीट करने के बाद ही वो चाय भी पिएंगे। तो यह एक एटीट्यूड भी गलत है, ये एक पर्सनालिटी भी गलत है। किसको ठीक करना है, परंतु भी कब भी मेहमान आएंगे तो जरूरत है, नहीं तो थोड़ी जरूरी है।
करेक्ट, दिस इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक तरीके से,
एक ये ऑब्सेशन का भी पार्ट हो
है
सकता
है, उसका भी पार्ट है।
लेकिन ये एंजाइटी भी है।
अच्छा,
कि भी वो व्यक्ति आ गया, उसने देखा कि ये कप बरोबर नहीं है यहाँ पर, तो जब तक उसको ठीक से नहीं रखेगा वो शांति से नहीं बैठ सकता है। तो वो भी गलती है
जी।
कि भी ऐसा नहीं भी होने दो, भी मैं आया हूँ ऑफिस से, मैं 10 मिनट रिलैक्स कर सकता हूँ, है ना, मैं चाय पी सकता हूँ, उसके बाद भी जो चीजों को ठीक करना है वो करेंगे। अगर घर में कोई विजिटर्स आने वाले
तो ऑब्वियसली
तब ठीक है,
बिल्कुल,
कि भी आपको सब छोड़ के पहले उसको ठीक करना पड़ेगा जब तक विजिटर आए।
बिल्कुल,
तो ये एक प्रकार की जिसको कहेंगे कि पर्सनालिटी।
ओके,
वो मेंटल पर्सनालिटी भी एंजाइटी को बढ़ा देती है
जी। भाई जी, कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर हम बात करें एंजाइटी की, एंजाइटी के अंदर में एक और एक नया पहलू आता है जिसे कहा जाता है कि हर वक्त एक पैनिक सा रहता है। हमें लगता है कि कुछ गलत होने वाला है, कुछ, क्योंकि आसपास सब कुछ इतना परफेक्ट तो है नहीं जैसा मैं चाहती हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि नेगेटिव चीजें इतनी हो रही होती हैं कि मैं अपने आप को फोकस नहीं कर पाती एक चीज के ऊपर। ऐसे में अपने फोकस को कैसे बनाकर रखें?
अब ये बात बहुत अच्छी है कि आपने जो कहा, दो इश्यू एक्चुअली। तो
जी,
एक इश्यू तो यह है जिसको इंग्लिश में कहते हैं कि कुछ लोगों की एक मन की स्थिति है जिसको कहेंगे कि अभी वो ड्रेड आने वाला है, कि भी भूकंप आने वाला है, ऐसा कि भी कुछ समस्या होने वाली है ना, ये आसमान टूटने वाला है। तो वह एक स्टेट ऑफ माइंड हो सकती है कि जो भी बिल्कुल गलत है।
ओके,
कि वो कुछ अचानक कुछ होने वाला नहीं है। और दूसरा कि एक साथ में आप टू मच करने की कोशिश कर रहे हैं। कि भी एक साथ में हमको टू मच नहीं करना है
जी।
You can really take things in a relaxed way. ना, उनको कहीं सिखाया भी गया है कि भी relaxed way में नहीं लेना है। ना, परंतु ये अच्छे से हम समझ जाए, भल बचपन में मुझे सिखाया गया कि अब मैं अपने आप को परिवर्तन कर सकता हूँ।
बिल्कुल।
At least no, कब तो मुझे थोड़ा बिल्कुल लाइफ को रिलैक्स वे में लेनी है, तब ही तो जिसके लिए मैं सब कर रहा हूँ, इतनी जो मेहनत आप कर रहे हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं, वो क्यों कमा रहे हैं? अल्टीमेटली तो सुख का अनुभव करना है।
True.
और जब तक मैं थोड़ा रिलैक्स नहीं हो पाऊंगा तो सुख का अनुभव कहाँ करूंगा।
डॉक्टर साहब, प्रायोरिटीज की अगर हम बात करें, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर में प्रायोरिटाइज करने की क्षमता बहुत कम होती है, जिसकी वजह से भी एंजाइटी बढ़ने लगता है।
बिल्कुल, वंडरफुल, नो, इट्स अ न्यू थिंग
जी,
कि जो वो ठीक से ना टाइम को मैनेज नहीं करते
जी,
वो प्रायोरिटी नहीं देते।
बिल्कुल,
पहले जो चीज है सिंपल सी कि उसको कर लेते।
बिल्कुल,
और जब तक वो चीज अर्जेंट नहीं हो जाती है, टाइम मैनेजमेंट में पूरी बात बताते कि टाइम को जो मैनेज करना हो, चार प्रकार की चीजें कहते हैं कि इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट।
करेक्ट,
कि जब वह काम आप करते रहते हो तो एंजाइटी नहीं होती है, परंतु जब कोई भी काम अर्जेंट और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो इम्पोर्टेंट तो है ही परंतु अर्जेंट हो गया तो एंग्जाइटी हो जाती है।
बिल्कुल,
तो बहुत अच्छा एक कारण है कि भी व्यक्ति टाइम को मैनेज नहीं कर पाता है।
जी डॉक्टर साहब, बात करें अगर हम जेनेटिक्स की, क्या एंग्जाइटी ये हमें हेरिडिटरी भी मिलता है, ऐसा भी हो सकता है, या फिर जो हम अभी कर रहे हैं उसी में ये इशू आ रहे हैं?
वास्तव में अगर रिसर्च को हम देखें
जी,
तो जीन्स के बारे में बहुत सारी रिसर्च हो रही है।
अच्छा,
सचमुच आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं
जी
कि भई ये जीन्स है कि भी जो जीन इस बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे नहीं कि भी डायबिटीज के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल है ना, अभी एडिक्टिव पर्सनालिटी के लिए भी जीन्स माने गए कि भी एक व्यक्ति शराब भी ज्यादा बनेगा क्योंकि शायद उसमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है। तो ऐसे ही एंग्जाइटी में भी जीन्स रिस्पॉन्सिबल जरूर है, बल उस पर रिसर्च हो रही है ना, और काफी हाई, अभी तो नोबेल प्राइज भी मिलने लगे कि भी जिन्होंने वो जीन्स पर रिसर्च की।
अच्छा,
तो एक इश्यू जरूर है परंतु इसमें दिक्कतें आ जाती है, उसको कॉज भी मान ले वो गलत बात नहीं है, लेकिन जब व्यक्ति ये समझता है कि भी जेनेटिकली आई एम प्रोन, तो फिर वो कदम नहीं उठाएगा। इसलिए मैंने आपको पहले कॉज नहीं बताया।
बिल्कुल
ना, कई लोग तो सीधा ही बोलते हैं कि मेरे पिताजी भी एंग्शियस थे, मैं भी एंग्शियस हूँ, तभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, परंतु ऐसा नहीं। जैसे डायबिटीज में हम देखते हैं कि भी घर में मदर फादर दोनों को डायबिटीज है लेकिन एक बच्चे को नहीं होगा।
बिल्कुल,
तो ऐसे ही आप में वो एंग्जाइटी प्रोन जीन्स है, परंतु अगर आप सचमुच कुछ करो तो आप कुछ हद तक तो एक मीडियम में तो आ सकते हैं। आप टोटली रिलैक्स नहीं हो सकते परंतु एक मीडियम लेवल पर तो आ ही सकते हैं।
बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज हमने इतनी सारी बातें सीखी जिसमें मुझे सबसे खूबसूरत बात ये लगी कि अगर हमें एंजाइटी से बाहर निकलना है तो कहीं ना कहीं अपने अंदर में पॉजिटिविटी की बहुत ज़्यादा उजागरण करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर पॉजिटिविटी नहीं होगी तो हमारे आसपास सब कुछ हमें खोखला सा नज़र आएगा, और एक जो वो दिया, जो वो आस की किरण होती है, वो पॉजिटिविटी में ही है, ना कि नेगेटिविटी में है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग इन द शो। ओम शांति।
ओम शांति।
दोस्तों, आज हमने क्या जाना, एंजाइटी के बारे में हमने कई सारे पहलुए जाने, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये था कि किस तरह से एक छोटे से बच्चे की अपब्रिंगिंग में उनके पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि किस तरह से उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस जो रहे हैं उसका भी प्रभाव उनके एंजाइटी पर पड़ता है, और साथ ही साथ उनकी एंजाइटी और ज़्यादा बढ़ने लगती है। लेकिन एक खुशखबरी ये है कि इससे हम बाहर फाइट भी कर सकते हैं। उसके लिए, जानने के लिए आपको हमारा अगला एपिसोड देखना होगा जिसमें हम रेमेडीज को डिस्कस करेंगे। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में, जिंदगी बने आसान। ओम शांति।